स्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम न्यायियों की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक के 11वें अध्याय के 27वें पद में इसराइल के परमेश्वर को न्यायी कहा गया है। परमेश्वर का जीवित वचन और हमसे क्या कहता है, ये सुनने से पहले आइए सुनते हैं एक मधुर गीत।
रूह से किया है, अब ना उदासी है ना दर्द कोई, प्याला शिफा
प्रिय मित्र, आप सबको प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम इन दिनों न्यायों की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। न्यायों के युग में विचरण करते हुए हम देख रहे थे कि जब जब इसराइल ने परमेश्वर का त्याग किया, परमेश्वर ने उन्हें वैरियों के अधीन कर दिया और जब उन पर अत्याचार किया गया तब वे परमेश्वर को पुकारने लगे और अनुग्रहकारी परमेश्वर ने हर एक बार की तरह किसी न किसी मुक्तिदाता को खड़ा किया और उन्हें मुक्ति दिलाई। तो आइए आज हम आगे बढ़ने से पहले परमेश्वर से सहायता मांगे और प्रार्थना करें। दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जिसे आपने हम सबको दिया है ताकि हम फिर से आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। हमारे पिता, हमारी प्रार्थना है कि आप हम सबको अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि जब हम आपके वचन पर विचार विमर्श करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, आपके वचन हमारे हृदयों से बोलने और बातचीत करने पाए। हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को जो दुखी और निराश हैं, जो चिंतित और परेशान हैं, जो बीमारी और अपने जीवन साथी की तलाश में और जो अपने नौकरी की तलाश में परेशान हैं, प्रभु आप उनकी सुधि लें ताकि हर एक जीवन आज के इस अध्ययन के द्वारा आशीष को प्राप्त कर सके। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, पहली बार परमेश्वर ने उन्हें उत्नियल के हाथों कुस त्रिशा तैम से उन्हें मुक्त करवाया था। दूसरी बार एहूद द्वारा एग्लोन से और फिर शमगार द्वारा और तब दबोरा और बाराक द्वारा कनानी सीसरा से। अब अध्याय 5 में दबोरा का गीत है जो वास्तव में सीसरा की पराजय की संपूर्ण घटना का अवलोकन और परमेश्वर का स्तुति गान है। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने इसराइल की दुर्दशा को देखा था जबकि दबोरा, बाराक और याएल उत्तरी क्षेत्र में थे और अंधकारपूर्ण देश पर छाया हुआ था और अंततः परमेश्वर ने इसराइल को मुक्ति दिलाई। तो आइए हम पढ़ते हैं न्यायों की पुस्तक 5 अध्याय उसके 1-5 पद में। उसी दिन दबोरा अबीनोअम के पुत्र बाराक ने यह गीत गाया कि इसराइल के अगुओं ने जो अगुवाई की और प्रजा जो अपनी ही इच्छा से भरती हुई, इसके लिए यहोवा को धन्य कहो। हे राजाओं सुनो, हे अधिपतियों कान लगाओ, मैं आप यहोवा के लिए गीत गाऊंगी, इसराइल के परमेश्वर यहोवा का मैं भजन करूंगी। हे यहोवा, जब तू सेर से निकल चला, जब तूने एदोम के देश से प्रस्थान किया, तब पृथ्वी डोल उठी और आकाश टूट पड़ा, बादल से भी जल बरसने लगा। यहोवा के प्रताप से पहाड़, इसराइल के परमेश्वर यहोवा के प्रताप से वह सीने पिघल कर बहने लगा। मेरे मित्रों, यह गीत निश्चय ही काव्य रूप में है। दबोरा अंगीकार करती है कि वह इसराइल के लिए माँ के समान है और वह सेवावृत्ति की खोज में नहीं है। उसकी अगुवाई उसका अपनी नहीं परमेश्वर की पसंद है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण पाए जाते हैं। मेरे मित्रों, दबोरा अन्य न्यायियों की तुलना में श्रेष्ठ है। वह योग्यता में ओतनेल से कहीं अधिक थी। स्त्री का अगुवाई में आना राष्ट्र के पतन का प्रमाण है। यह दुर्बलता और ओज रहित युग का संकेत है। हम भीरू अर्थात डरपोक बारा को भी देख चुके हैं। वह स्त्री के पल्लू में मुंह छिपाने वाला पुरुष था। वह युद्ध में मीलों दूर रहना चाहता था और सच तो यह है कि वह युद्ध में जाना ही नहीं चाहता था। उसे युद्ध में ले जाने के लिए दबोरा को उसके साथ जाना पड़ा। मेरे प्रियो, वर्षों पूर्व मैंने डॉक्टर हेरी आयरनसाइड को एक घटना का वर्णन करते हुए सुना था। एक दिन वह और उनके मित्र किसी बगीचे में जा रहे थे। वहां एक स्त्री प्रचार कर रही थी। उनके मित्र ने कहा, एक स्त्री के लिए इस प्रकार खड़े होकर प्रचार करना बड़ी लज्जा की बात है। मुझे इस पर दुख होता है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर आचरण साइट ने उत्तर दिया, मैं आपसे सहमत हूँ कि यह लज्जाजनक बात है, परंतु स्त्री का प्रचार करना नहीं, अपितु यह कि इसका स्थान लेने के लिए कोई भी पुरुष वहां उपस्थित नहीं था। मेरे मित्रों, आप कुछ भी कहें, मैं शायद पुराने विचारों का माना जाऊं, परंतु मैंने स्त्रियों द्वारा घर से बाहर निकलने के परिणाम का पूर्वानुमान लगाया था कि वह नैतिक पतन का कारण होगा, और यही हुआ भी। सबसे पहले तो पत्नियों ने पतियों की हत्या, संतान त्याग, नशा और आत्महत्या का आगमन हुआ। मुद्रास्फीति, अपराध तथा अन्य अनेक कारणों की अपेक्षा सबसे बड़ा संकट है स्त्रियों द्वारा परिवार में अपने स्थान का परित्याग। मेरे प्रियो, दबोरा वास्तव में अपना परिवार अनदेखा नहीं कर रही थी, परंतु बाराक युद्ध में जाना नहीं चाहता था। उसे इसराइल की मुक्ति के लिए याबीन की सेना से युद्ध करना था, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें विजय दिलाने की प्रतिज्ञा की थी। मित्रों, इसराइल की विजय तो हुई, परंतु बाराक के लिए यह विजय अति कीर्तिमान रही। युद्ध विजय के बाद बाराक और दबोरा ने यह गीत गाया जो मानव जाति का प्रथम गीत है। हम न्यायों की पुस्तक 5:6-7 पद में पढ़ते हैं, अनाथ के पुत्र शमगार के दिनों में और याएल के दिनों में सड़कें सुनी पड़ी थी और बटो ही पगडंडियों से चलते थे। जब तक मैं दबोरा न उठी, जब तक मैं इसराइल में माता होकर न उठी, तब तक गांव सूने पड़े थे। मित्रों, इस गीत में शमगार का नाम भी आया है। आपको स्मरण होगा कि उसने बैल के पैने से 600 पलिस्तियों को मार गिराया था। वह इसराइल की अराजकता और घोर अनैतिकता के समय न्यायी था। उस समय मुख्य मार्गों पर चलना असुरक्षित था। यात्री पगडंडियों से होकर यात्रा करते थे। मार्गों पर चलना तो आज भी असुरक्षित है। स्त्रियां रात में बाहर निकलते हुए डरती हैं। दबोरा को इन सब खतरों का मान था, क्योंकि उसके युग में बहुत अराजकता थी। मेरे मित्रों, उसके गीत में अगुवाई की कमी का उल्लेख भी है। शासक समाप्त हो गए थे, अगुवाई के लिए कोई महापुरुष नहीं था। दबोरा ही एक माता थी, उसमें मत की ममता थी। वह तो अगुवाई की भूमिका निभाना नहीं चाहती थी, परंतु अगुवाई करने के लिए कोई पुरुष नहीं था। ऐसी परिस्थिति में कैसी त्रासदीपूर्ण बात होती। वह अपनी संतान के लिए अपने से अधिक भलाई चाहती थी। इसी मनोकामना के कारण वह इसराइल की न्यायी बनी। उसने आगे बढ़कर उस युग में बागडोर संभाली जब इसराइल ने परमेश्वर का त्याग कर दिया था। हम न्यायों की पुस्तक 5:8 पद में पढ़ते हैं, नए नए देवता माने गए। उस समय फाटकों में लड़ाई होती थी। क्या 40,000 इसराइलियों में भी ढाल और बर्शी कहीं देखने में आती थी। मेरे प्रियो, इसराइल ने परमेश्वर को त्याग दिया था। आज भी मनुष्य ने परमेश्वर को त्याग दिया है। अंतर केवल इतना है कि इसराइल नास्तिक बनने की अपेक्षा मूर्ति पूजक बन गया था। वे अनेक देवताओं की उपासना करने लगे थे। और आज असंख्य लोगों के बारे में हम सोचें जो परमेश्वर से रहित जीवन जी रहे हैं। दबोरा नहीं चाहती थी कि उसकी संतान का जीवन ऐसा हो, इसलिए उसे यह भूमिका अपनानी पड़ी। मेरे मित्रों, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाने पर मनुष्य ने सोचा था कि अब शांति रहेगी, परंतु भजन संहिता 85:10 कहता है, करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है, धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। परंतु आज मेरे मित्रों, धर्म और मेल अर्थात शांति आपस में मेल ही नहीं रखते हैं। मेरे विचार में वे एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें शांति के साथ पाप में नहीं रहने दिया, इसराइल को भी नहीं रहने दिया था। यह बड़ी ही रोचक बात है कि इसराइल में सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं था। बैरी का बैरी सामना करने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं था। दबोरा ने गीत गाया, उस समय फाटकों में लड़ाई होती थी, क्या 40,000 इसराइलियों में भी ढाल या बर्छी कहीं देखने में आती थी? इसराइल की सहायता कहीं नहीं थी। हम न्यायियों 5:9 में पढ़ते हैं, मेरा मन इसराइल के हाकिमों की ओर लगा है जो प्रजा के बीच में अपनी ही इच्छा से भरते हुए यहोवा को धन्य कहो। मेरे मित्रों, दशा बहुत ही बुरी नहीं थी। यदा कदा ईश्वर भक्त शासक थे, दबोरा चाहती थी कि वे जान ले और दबोरा उनके साथ है। वह तो अभक्तों को अस्वीकार करती थी। हम न्यायियों 5:10-11 में पढ़ते हैं, हे उजली गदहियों पर चढ़ने वालों, हे फर्शों पर विराजमानने वालों, हे मार्ग पर पैदल चलने वालों, ध्यान रखो, पनघटों के आसपास धनुर्धारियों की बात के कारण वहां के यहोवा के धर्ममय कामों का, इसराइल के लिए उसके धर्ममय कामों का बखान करेंगे। उस समय यहोवा की प्रजा के लोग फाटकों के पास गए। मेरे मित्र, फाटक वह स्थान था जहां मनुष्यों का समागम होता था। मनुष्य जहां भी एकत्र हो, वे अन्य बातों की अपेक्षा, जैसा कि उस युग में होता था, वे परमेश्वर की भलाई का वर्णन करते थे। हम न्यायियों की पुस्तक 5:12-13 में आगे पढ़ते हैं, जाग जाग हे दबोरा, जाग जाग गीत सुना, हे बाराक उठ, हे अबीनोअम के पुत्र, अपने बंधुओं को बंधुआई में ले चल। उस समय थोड़े से रईस प्रजा समेत उतर पड़े, यहोवा शूरवीरों के विरुद्ध मेरे हित उतर आया। मेरे प्रियो, बैरी पर विजय पाने के बाद दबोरा बाराक को पदमभार सौंपना चाहती थी, परंतु वह इनकार कर देता है और परिणाम स्वरूप दबोरा को अगुवाई करना ही पड़ा। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह सामर्थ्य पर प्रभुता करती है। तब हम न्यायियों 5:14 में पढ़ते हैं, एप्रेम में से वे आए जिसकी जड़ अमालेक में है, हे बिन्यामीन तेरे पीछे तेरे दलों में, माकिर में से हाकिम और जबुलून में से सेनापति का दंड लिए हुए उतरे। यहाँ पर हम देखते हैं कि गोत्र भी सहभागी हुए। तब हम न्यायियों की पुस्तक 5:15-16 में आगे पढ़ते हैं, और इस्साकर के हाकिम दबोरा के संग हुए, जैसा इस्साकर वैसा ही बाराक भी था, उसके पीछे लगे हुए वे तराई में झपट कर गए, रूबेन की नदियों के पास बड़े बड़े काम मन में ठाने गए। तू चरवाहों का सीटी बजाना सुनने को भेड़शाला के बीच क्यों बैठा रहा? रूबेन की नदियों के पास बड़े बड़े काम सोचे गए। मेरे मित्रों, कुछ गोत्रों ने सहायता नहीं की, रूबेन ने अपने योद्धा नहीं भेजे, घोर आवश्यकता के समय वे सहयोग के लिए उपस्थित न हुए, पड़ोसी होकर भी उन्होंने साथ नहीं दिया। उन्होंने अपने भेड़ों को संभालना उचित समझा और अपनी भेड़ें किसी के भरोसे पर छोड़ना उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने ऐसा जताया जैसे युद्ध नहीं हो रहा है। दूसरी ओर इस्साकर का गोत्र दबोरा और बाराक के साथ खड़ा हुआ। हम न्यायियों 5:17 में पढ़ते हैं, गिलाद यर्दन पार रह गया और दान क्यों जहाजों में रह गया? आशेर समुद्र के तीर पर बैठा रहा और उसकी खाड़ियों के पास रह गया। दान व्यापार में व्यस्त था, वे युद्ध करना नहीं चाहते थे। आशेर समुद्री तट पर व्यस्त था और मानव स्वभाव कभी नहीं बदलता। जैसा दबोरा के युग में अनिष्टों ने किया था, वैसे ही आज भी अनेक जन करते हैं, अपने देश को अपमानित होने देते हैं। ऐसा करना ना तो उचित था तब और ना ही अब है। हम न्यायियों 5:18 में पढ़ते हैं, जबलून अपने प्राण खेलने वाले लोग ठहरे, नप्ताली भी देश के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर वैसा ही ठहरा। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दो गोत्रों ने युद्ध किया। तब हम न्यायियों की पुस्तक 5:19 में पढ़ते हैं, राजा आकर लड़े, उस समय कनान के राजा मगिद्दो के सोतों के पास तानाक में लड़े, पर रुपयों का कुछ लाभ ना पाया। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम फिर देखते हैं कि इसराइल के साथ उनके पूर्व काल के बैरी युद्ध में सहयोग दे रहे थे। उन्होंने मगिद्दो के सोतों के पास इसराइल का साथ दिया। मगिद्दो जो उस समय हर तरफ से मार्गहीन था। हम न्यायियों 5:20 में आगे पढ़ते हैं कि आकाश की ओर से भी लड़ाई हुई, वरन ताराओं ने अपने अपने मंडल से सीसरा से लड़ाई की। मेरे मित्रों, मेरे विचार में यह मात्र काव्य परिकल्पना नहीं है। निस्संदेह कहा जा सकता है कि परमेश्वर उनके बैरियों के विरुद्ध था। तब हम न्यायों 5 उसके 21 से 23 पद में आगे पढ़ते हैं, किशोन नदी ने उनको बहा दिया, अर्थात वही प्राचीन नदी जो किशोन नदी है। हे मन, हिया बांधे आगे बढ़। उस समय घोड़े के खुरों से टाप का शब्द होने लगा, उनके बलिष्ठ घोड़ों के कूदने से यह हुआ। यहोवा का दूत कहता है कि मेरोज को शाप दो, उसके निवासियों को भारी शाप दो, क्योंकि वे यहोवा की सहायता करने को, शूरवीरों के विरुद्ध यहोवा की सहायता करने को न आए। मेरे मित्रों, सच तो यह है कि मैं मेरोज की पहचान नहीं कर पाया हूँ, परंतु मैं नहीं चाहता कि कभी मैं मेरोज की नागरिक बनूं। उन्होंने परमेश्वर के काम में सहयोग नहीं दिया, अतः वे शापित हैं। इसी प्रकार आज असंख्य लोग हैं जो सेवा में सहयोग नहीं देते हैं। मैं नहीं जानता कि आप सेवा में सहयोग देते हैं या नहीं, लेकिन असंख्य हैं जो सेवा में सहयोग देना नहीं चाहते हैं। हम न्यायों की पुस्तक 5 अध्याय उसके 24 पद में पढ़ते हैं, सब स्त्रियों में से केनी हेवेर की स्त्री याएल धन्य ठहरेगी, डेरों में से रहने वाले सब स्त्रियों में वह धन्य ठहरेगी। मेरे प्रियो, उस समय की मुख्य नायक याएल थी, बाराक नहीं था। चाहे उसका काम कैसा भी घृणित रहा हो, यह गान युद्ध में उत्तर भाव में लिखा गया है। चारों ओर युद्ध का विनाश फैला हुआ था, लाशें, विध्वंसत रथ, जली हुई वस्तुएं सब बिखरी हुई थी, मनुष्य की आत्मा काली हो गई थी, युद्ध के चिन्ह उस पर छाए हुए थे, सभ्यता औरन की नाई उतार दी गई थी, गुर्राती गरजती पाशविकता प्रकट हुई थी, और याएल ने जो किया वह अत्यधिक भयानक काम था। स्त्रियों को परमेश्वर ने पुरुषों से अधिक कोमल बनाया है। आज जीवन की एक कोमल वस्तु समाप्त हो गई है, और मेरे विचार में वह नारीत्व में केंद्रित है। मेरे मित्रों, अब माँ का दिल प्रकट होता है। दबोरा को स्मरण हुआ कि सिसरा चाहे वैरी था, परंतु उसकी भी माँ थी। वह याएल को सराहती तो है, परंतु सीसरा की माँ का विचार भी उसके मन में आता है। हम न्यायियों की पुस्तक 5 अध्याय 28 से 30 पद में पढ़ते हैं, खिड़की में से एक स्त्री झांक कर चिल्लाई, सीसरा की माता ने झिलमिली की ओट से पुकारा कि उसके रथ के आने में इतनी देर क्यों लगी, उसके रथों के पहियों को आबेर क्यों हुई है। उसकी बुद्धिमान प्रतिष्ठित स्त्रियों ने उससे उत्तर दिया, वरन उसने अपने आप को इस प्रकार उत्तर दिया कि क्या उन्होंने लूट पाकर बांट नहीं ली, क्या एक एक पुरुष को एक एक वरन दो दो कुंवारियां और सीसरा को रंगे हुए वस्त्र की लूट, वरन बूटे काढ़े हुए रंगीले वस्त्र की लूट और लूटे हुओं के गले में दोनों ओर बूटे काढ़े हुए रंगीले वस्त्र नहीं मिले। यहाँ पर हम देखते हैं कि सीसरा की माँ अपने मन में भांप गई थी कि क्या हुआ है। वह जान गई थी कि उसकी हत्या हो गई है। वह तो यही सोचती रही कि सीसरा घर लौटेगा, परंतु वह आया नहीं। मित्रों, यहाँ दबोरा का मन सीसरा की माँ के लिए विचलित होता है, क्योंकि वह स्वयं भी एक माँ थी। हम न्यायों की पुस्तक 5 अध्याय उसके 31 पद में हम पढ़ते हैं, हे यहोवा, तेरे सब शत्रु ऐसे ही नाश हो जाएं, परंतु उसके प्रेमी लोग प्रताप के साथ उदय होते हुए सूर्य के समान तेजोमय हो, फिर देश में 40 वर्ष तक शांति रही। मेरे मित्रों, पूर्व काल में ऐसी माताएं रही हैं जिन्होंने बुरे दिनों में बाधाओं पर विजय प्राप्त की, वैसे ही बुरे दिन जैसे दबोरा के युग में थे। संत अगस्तीन की कहानी को आप पढ़िए, उसकी माता मोनिका उसके लिए बहुत प्रार्थना करती थी। वह एक लंपट प्रोफेसर था, परंतु एक दिन प्रभु के चरणों में आ गया। जॉन वेस्ली की माता सुसन्ना अपने दोनों पुत्रों के लिए बहुत प्रार्थना करती थी। मैं स्त्री या माता की उपासना को प्रोत्साहन नहीं दे रहा हूँ, परंतु मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम इस विषय में ईश्वरीय विचार से दूर जा रहे हैं। दबोरा और उसके गीत में हमारे सामने कैसा उत्तम परिदृश्य उभरता है। मेरे मित्रों, महिलाएं आज भी बहुत काम कर सकती हैं। जिस प्रकार अगस्तीन की माता ने अगस्तीन के लिए प्रार्थना किया, और वह एक महान परमेश्वर का दास बना। और उसी तरह से जॉन वेस्ली की माता सुसाना ने भी अपने पुत्रों के लिए प्रार्थना किया और वे भी परमेश्वर के महान दास बने। मित्रों, आज भी बहुत सारी माताएं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकती है। यदि वे बिगड़ रहे हैं तो आप उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना के द्वारा आपके बच्चों को सही रास्ते पर ला सकता है। हो सकता है कि परमेश्वर आपके बच्चों को अपनी महिमा के लिए भी इस्तेमाल करे सिर्फ आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा। क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे अच्छे बने? क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे परमेश्वर के दास बने? क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे परमेश्वर के भय में अपना जीवन बिताएं? आज इस संसार के चकाचौंध में आपके बच्चे परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आपके बच्चे उसके भय में अपना जीवन व्यतीत करें। मेरे मित्रों, ये दो गवाहियां हमारे सामने में है। अगस्तीन की माँ ने प्रार्थना किया और वह परमेश्वर का दास बना। जॉन वेस्ली की माँ ने प्रार्थना किया और वह भी परमेश्वर का दास बना। आज आपकी प्रार्थना के द्वारा आपके बच्चे भी परमेश्वर के दास या उसके भय में चलने वाले व्यक्ति बन सकते हैं। दबोरा को देखिए, उसने परमेश्वर के निकटता में आकर अपने लोगों को छुड़ाया और उसने यह गीत हम सब के सामने में रखा है। मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, लेकिन मैं यह विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में एक नए चुनौती को प्राप्त किया है। प्रभु आपकी सहायता करे कि आप भी परमेश्वर के निकटता में आए और प्रार्थना करने वाले, एक दूसरे के लिए चिंता करने वाले, एक दूसरे को उत्साहित करने वाले बन जाएं। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू मुझे छू पाखरू मुझे छू मुझे छू पकड़ू मुझे छू छू।